आज की बात।
आज की बात लेकर आपकी सभा में उपस्थित हैं कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हमारी चर्चा का विषय है पूरे भारत में एनआरसी की तैयारी। भारत में एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट।
भारत में आजकल एक बार फिर एनआरसी पर चर्चा गर्म है। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी अब पूरे देश में एनआरसी लाने का ऐलान हो गया है, जिसके बाद इसका विरोध और समर्थन दोनों शुरू हो गया है। एनआरसी का कई राज्यों ने विरोध किया है, किंतु पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक विरोध हो रहा है, जहां भाजपा के अनुसार लाखों गैर कानूनी बांग्लादेशी मुसलमान बस गए हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक चुनावी भाषण में कहा था कि ये गैर कानूनी घुसपैठिए हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं और हम सभी घुसपैठियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि ये बंगालियों, विशेषकर बंगाली मुसलमानों में भय व आतंक पैदा करने का अभियान है। असम में एनआरसी के नाम के लिए जो शर्तें थीं, उनमें एनआरसी में उन लोगों का नाम शामिल हुए हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले से वहां के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए थे। यदि असम का फार्मूला ही पूरे भारत में लागू होता है तो उसके लिए कई दस्तावेज रखने होंगे। इस प्रकार के दस्तावेजों को दो सूची में बनाया जा सकता है। इसमें पहली सूची में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र और शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी सूची में जन्म प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज और बोर्ड या विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को शामिल किया गया है। भाजपा और उससे संबंधित नेता इसे गैर कानूनी रूप से भारत में रहने वालों की पहचान का एक सामान्य तरीका बता रहे हैं, जबकि मुसलमानों में इस बारे में आशंकाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही असम में 3,30,00,000 की आबादी के लिए इस काम में 5 बरस लगे और लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरे भारत में लगभग 1,30,00,000,000 की आबादी के लिए एनआरसी का खर्चा काफी अधिक होगा। फिर उसकी सफलता भी संदिग्ध है, क्योंकि असम में एनआरसी पूरा होने के बाद स्वयं राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। बहुत से लोगों का विचार है कि ये सरकार का एक चुनावी हथकंडा है और मुस्लिम विरोधी कदम द्वारा भाजपा चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अगले चुनाव से पहले एनआरसी का ऐलान हो सकता है।
भारत के प्रधानमंत्री ने तो एनआरसी पर अपने इरादे बहुत पहले साफ कर दिए थे।
देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं।
लेकिन हालिया दिनों में भारत के गृह मंत्री ने एनआरसी पर एक ऐलान करके हलचल मचा दी।
सभापति महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा विरोध किया। क्या पूरे भारत में असम जैसा एनआरसी लागू किया जाएगा? आरफा खानम शेरवानी के कार्यक्रम में संगीता बरुआ कहती हैं,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यही वही प्रक्रिया भारत के अन्य जगह में क्यों करनी है। जैसे आप देखिएगा, मतलब मैं एक चीज समझती अगर ये बॉर्डर स्टेट की बात करते, एक तो ये है कि जो एजिटेशन हुई थी असम का, जो एंटी फॉरेन एजिटेशन हुआ 1979 to 1985, उसके बाद से ये असम एकॉर्ड का साइन हुआ जिसमें ये कट ऑफ डेट की डिसीशन लिया गया कि ये सिटीजनशिप कट ऑफ डेट होगी और उसके हिसाब से ही ये अपडेट हुआ। तो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये है कि ओपन बॉर्डर रहा कई साल, तो जिस वजह से ही ये एजिटेशन शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाकी जगह में नहीं आप नहीं देख सकते हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि क्योंकि अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर में, अगर ओपन बॉर्डर अभी भी ओपन है, तो उसमें बहुत सारे जगह अभी भी ओपन है, तो अगर आप करना चाहते तो आप बॉर्डर स्टेट्स कीजिए।
इसी कार्यक्रम में अजय आशीर्वाद ने भारत के गृह मंत्री के दावे का खंडन करते हुए कई चिंताजनक बिंदुओं का उल्लेख किया।
असम में एनआरसी की एक अलग प्रक्रिया थी, उसका अलग इतिहास था, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लगाएंगे, उसमें सिर्फ मेरे लिए उसका सिर्फ एक ही मतलब है। वो ये कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हटाने की ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मैं इसको साफ तौर पर ये देखता हूँ कि अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स हटाने की प्रक्रिया है तो वहाँ पर सिर्फ इस तरीके से बांग्लादेशी, जहाँ पे हम जानते हैं कि मुसलमान इमिग्रेंट आ रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का कैंपेन नहीं होता। और अगर जब से ये एनआरसी की बात चल रही है, बेंगलोर में कई सारे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बंगाली स्पीकिंग जो हेल्प आते हैं घर पे, उनको वो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं हर जगह में, वहाँ पे ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। इस तरीके की प्रक्रिया सारे देश में चालू हो जाएगी। और अगर अमित शाह जी ने ये भी कहा कि कोई भी रिलीजन के लोग आहत नहीं होंगे इस एनआरसी प्रक्रिया से, और मगर जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, तो जहां वो रेफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं, और अगर इनका मतलब ये होता कि रेफ्यूजीज़ को हम शरण देंगे इंडिया में, और इंडिया इतना महान देश है कि शरण देंगे, तो उसमें वो मुसलमान रेफ्यूजी भी शामिल होते हैं। और सबसे पहले एनआरसी और सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के लाने से पहले वो यहाँ पे जो इतने सारे लाखों की तादाद में रोहिंग्या है जो बर्मा से ढकेल कर यहां पर रह रहे हैं, उनको सबसे पहले शरण देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ भाजपा लगातार ओपन कैंपेन कर रही है कि इनको यहां से हटाना है और ये इलीगल इमिग्रेंट है। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट और ये जो रेफ्यूजी का ये जो इन लोगों ने ताना बाना बुना है, वो पूरी तरीके से धर्म के आधार पे है। और भाजपा जो इतने दिनों से अपनी राजनीति कर रही है, एक एंटी मुस्लिम राजनीति, ये उसी के कंटिन्यूटी में मैं देखता हूँ।
भारत के गृह मंत्री भले ही कहें कि धर्म से इस फैसले का संबंध नहीं है, लेकिन समीक्षक हसन रिजवी भी एक टीवी कार्यक्रम पर उनके इस बात से सहमत नजर नहीं आते। वो कहते हैं,
आपको इस परिप्रेक्ष्य आप देखिए इस पार्टी की कोई भी पॉलिसी, जो जो ऐसे मुद्दे हैं कि जिससे लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन या जिसको कहिए कि एक हंगामी सूरत अख्तियार होती है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी ख़ास तौर पे वैसे मुद्दे उठाती है। ये तो एक जनरल इसका, चूँकि ये खुद भी क्लियर नहीं होती है कि जब ये मुद्दे ज़मीन पे उतरेंगे तो उसके क्या पिटफॉल्स आएंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, पहले ये उठा लेती है ताकि यही पहला तो ये शॉट यही मार देती है इस बात को लेकर के कि भाई कम से कम एक मौका आए, लोग कम से कम मेन मुद्दे से हट जाएं। अब आप कंटेंट पे आइए, इसके बात कीजिए। हम लोग कहीं से इसको एनआरसी बोलते हैं राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय मुद्दे को सर्व करने वाला नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे को सर्व करने वाला। हम आपको पिन पॉइंटेड 3-4 पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लीजिए कि जो अमित शाह भी ये स्टेटमेंट आपने शुरू में दिखाया, बोल रहे हैं एनआरसी अलग है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अलग है। आप देखिएगा, बोलने के लिए अलग है, लेकिन एनआरसी के बाद जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि हर वो आदमी जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, फला है, वो नागरिकता उसको मिल जाएगी, रिफ्यूजी होना चाहिए, तो एनआरसी में जो लोग एक्सक्लूड होंगे उनको इस तरीके की संतावना दी जा रही है कि हम ऐसा सिटीजनशिप में अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं कि जब वो नीचे एनआरसी उतरेगा और दिक्कत होगी तो तुम घबराना मत, हम तुमको घुसा देंगे इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला करके। तो पहली बात तो कि बोलने के लिए दो बिल अलग है, एक्चुअली जब वो एग्जीक्यूट होगा तो एनआरसी इन टैंडम विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तौर पे होगा। आप एक्चुअल उठा करके देखिए, 1971 की ये बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट आज जो इतना पीसफुल बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट कि बांग्लादेश एक तरीके से खास तौर पर प्रेजेंट गवर्नमेंट इसका सपोर्ट कर रही है। आप किस तरीके की बात करते हैं भाई, आप उठा करके डालिएगा, आप रिकॉर्ड के बाद अगर कोई बोलता है कि ठीक है एक फेक आईडी अख्तियार करता है बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, जैश मोहम्मद के लोग आते हैं या कोई रोहिंग्याज आता है और आने के बाद वो फेक आईडी हिंदू का उठाता है, कौन ऐसी एजेंसी होगी सिवाय रॉ को छोड़ करके कि जो जा करके इसको वेरीफाई करेगी, क्या वक्त लगेगा? 1960 में चकमाज आए, आने के बाद आप जाके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में उठा के देखिए, आज तक उनको नागरिकता नहीं मिली। क्या रॉ का काम यह रह जाएगा जाकर के कि 60 में आने के बाद रोहिंग्या आज भी रिफ्यूजी कहलाते जा रहे हैं? त्रिपुरा का उठा करके आप मामला देखिए, त्रिपुरा ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है, चूंकि वहां मेजोरिटी ही जो है आपको बाहर के लोग हैं। आप इसका उठा करके क्या, आसाम का तो केस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। सो ये चाहती एक्चुअली क्या है कि इसका जो एग्जीक्यूशन है, क्या हम जैसे लोगों को ये बात का इल्म है, हम लोग को इसका पता है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो कितना लॉफ साइडेड एग्जीक्यूशन होने वाला है, कितनी लार्जेस्ट मशीनरी लगने वाली है, लेकिन इसको इसको पता है ये कल हो करके क्या होगा, या तो अपोजिशन हंगामा करेगा, वही सुप्रीम कोर्ट आकर के स्टेप इन करेगा और करने के बाद कहेगा कि आप विड्रॉ कीजिए।
भारत में बहुत से दल है, कुछ क्षेत्रीय और कुछ राष्ट्रीय। राष्ट्रीय दलों को सत्ता मिलती है तो वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं और उसे उठाना भी चाहिए, किंतु ये भी जरूरी है कि उठाए जाने वाले मुद्दों को राष्ट्र भी राष्ट्रीय समझे, सांप्रदायिक न समझे। ये हर सत्ताधारी दल के लिए जरूरी है क्योंकि इसका संबंध देश की छवि से होता है।